शांति जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी चैप्टर 3 लोक लाज भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञान अमृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते, अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञान अमृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वह शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थीं? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थीं? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करने चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है, वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थीं? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थीं। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ, मैं ज्ञान अमृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा से है ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर रहती हूँ, निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ, यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अब वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्य पुत्र अब क्यों ना हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, हाँ केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं, अतः आओ उस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है उस नाते को सामने रख कर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें। देखो हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था वह भी हम करेंगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पीक दान की बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के धाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञान अमृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता ही की भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म के शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकाल कर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती, वह प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी है। जीवन की घड़ियां यो ही ना खो, ज्ञानी बनो योगी बनो, चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अभिषाद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीमची अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, और हाय शराब दो इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने के कारण उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि दो तीन महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोट भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़ कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर उन्हें निकाल दिया गया है, तो उस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है, वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है, तब क्या उनके मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी, हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृतांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अतः उन्होंने इस प्रकार एक गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना। मैं आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना। खाते मांस मदिरा बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खेलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं और कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के यह महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी ही इच्छा से किया था। अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो भी वे काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी तीन माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वह पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव पति द्वारा अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबें। यह सत्संग में न आना चाहें तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव, अनुमति अथवा आज्ञा दे सकता हूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की यह आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती। ये भी उस परमपिता की आज्ञा के कारण विवश हैं, और मैं भी। बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है, वह मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में भी इन दिनों एक गीत बना हुआ था, जिसका पहला पद था, सेवक अचेत ही ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते थे कि मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा था कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है कि जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसावादन भी कर लिया था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती? उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों में इस गीत के भावार्थ में ही टिक गई थीं। ज्ञान ही मन का मीत सखीरी, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत, मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे, यही बुद्धि योग की है रीत, सखीरी सीता और राम की प्रीत, मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे, उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़क से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता ब्रह्मचर्य के नियम का इस दृढ़ता से पालन करता देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी, तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? उन्हें तो मालूम नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग में और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल के सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्रायः माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते थे। तीसरे, लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। काम वासना के अधिकार की मांग। अतः जिन सिंधी वर्की लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया, तो इस माया नगरी के और बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं माताओं अथवा पुत्रों पौत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी से आपका भरे बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया धमकाया और पीटा भी गया कि वे अपने पुत्रियों या पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद करें। वहां के मुखिया लोगों का शहर पर काफी दबदबा था, और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों अथवा बोर्ड में, जैसे कि सिंध ऑब्जर्वर नामक समाचार पत्र में भी उनका उच्च स्थान था या उनकी पहुंच थी। अतः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों में ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहु बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की भूरी भूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंगाराम जी, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी इस सत्संग में आते थे। अब लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में भी एक बड़ा दिलचस्प वृत्तांत है जो कि निम्नलिखित है। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परम धाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वह इस प्रकार था, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले जल्द वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से, लोगों की जबानों से, दुनिया की निगाहों से, अब और कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से, अब और कहीं ले चल। जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला है, तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ ना लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मुखी जी डर गए। वह बोले, अच्छा, जादू टोने वाले को ले आओ। लोग एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़ा फूंकी, ताबीज आदि का काम करता था। वह आकर बोला, आह, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर हुआ है। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना बस लोगों ने ईंटें पत्थर रोड़े उठा उठा कर उस रिकॉर्ड को मारे ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरह उससे निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकल कर किसी को लग जाए। देखिए तो संसार की कैसी हालत हो चुकी है। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही लोगों को ताबीज देना है और जिसे यही बात पर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया। वे पत्थर मारकर जादू को भगाने में लग गए। कभी कभी समझदार और सयाने लोगों को भी क्या हो जाता है, इतना समय ज्ञान सुनने से जिन लोगों का जीवन बदला था, क्या वह जादू से बदला था? इतने लोगों को ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या वह जादू से मिली थी? बच्चों बच्चियों की शिक्षा आदि का यह सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वाह रे अभागे लोग, ईश्वरीय ज्ञान तो प्रायः लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तूने सामान्य विवेक भी खो दिया? रस्मों, कर्मकांडों, जादू टोनों की भरमार में तू ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि यदि ओम मंडली के तपस्वियों के पास ऐसा कोई जादू होता, तो वे देश के नेताओं तथा अन्य अन्य लोगों को लगाकर उनको अपने वश न कर लेते। सच है, यदि कोई व्यक्ति बनावटी हीरो की दुकान वाले बाजार में सच्ची हीरो की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे ही मानेंगे। वह चाहे कितने भी प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बल्कि कोई बिरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्पक्ष प्रयोग करता होगा, उसके हीरो का सौदा करने को तैयार होगा। ठीक यही वृतांत परमपिता परमात्मा के साथ होता है। जब वह ज्ञान रत्नों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहाँ टोने, झाड़ फूकी और झूठे जादू प्रचलित हैं, वह क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा जादू है। वह जिसको लग जाता है, वह अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ देता है। परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं कि इस पर जादू हो गया है। सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सभी पर होना चाहिए कि जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदलकर देवता बन जाए। हाँ, तो ऐसी एंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान वे मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृतांत हम ऊपर लिख आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्म पत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी दादाजी के यहाँ चली आई थी। अतः मुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और वे ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके सेठ के घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरे उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अतः मुखी मंगाराम जी के ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञान अमृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं या माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने पांच पांच सात सात ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ फिर दोहराते हैं। अभी 100 वर्ष ही हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर दिया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ भूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का उपदेश किया, तो उनके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनहलक का नारा लगाया, तो सभी जानते हैं उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आणिया नाल चिड़वाए गए, रेता विच तपाए गए, खल्ला नुचवाइयां गईयां, चरखियां ते चढ़ाए गए, पर उन्होंने सी नहीं कीती। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के जमाने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया था। तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी की भी खाल उतार दी गई। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने जमाने की बात क्यों करें, अभी 50 वर्ष ही तो हुए हैं कि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली गई थी। केवल धर्म की बलिवेदी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों ना हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उन पर बहुत सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है के जनता का यह स्वभाव है कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है। स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है। कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है। भरत हरि की तरह राज्य भाग छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है। बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता भी भेड़ चाल प्रसिद्ध है, जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफ़ी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी शहतीर की तरह दिखाई देने लगता है और वह वाक्पटु, बुलियार, स्वार्थी, पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों का जल्दी साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता अथवा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, वह साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी। जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे की पंछी की तरह कैद रहती थीं और बेजुबान थीं, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया है और उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया था। दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण राज्य की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि मतलब भविष्य दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था। लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परम पिता परम आत्मा शिव को तो वे देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों तथा आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वह प्रायः सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो। इसका भाव यह था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खाम खाम कहा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ। दादा जो अपने गृहस्थ व्यवहार तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने ही उनमें दिव्य प्रवेश अथवा सन्निवेश करके उनके मुख द्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ही ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं यह कार्य करा रहा हूँ। इन्हें यह तो मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना तो कोई तन है नहीं, इसलिए जब वह मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो यह अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चीर हरण किए आदि आदि, और ऐसे ऐसे आख्यान अथवा कथानक सुन संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु है, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं, अतः कोई बात नहीं है। बाबा यह भी कहते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने पर नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे। शाहे जहां शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने को है छिपाया, अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकारों में रोते थे सब, देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मत मातों को उस प्रभु ने आज जगाया, ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है, देख देख अतीन्द्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। शाहे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। यहाँ शाहे जहान का मतलब है शाहों के शाह शिव परमात्मा। परंतु दूसरी ओर एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था और वे कन्याओं और माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे, इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनको चारपाइयों से बांधकर उनके हाथों को पायों के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिनों तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हवन करने वाले दस्ते भी मारे थे। ओह, हर एक बंद की गई कन्या माता की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेगी। वे सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वे तो घर बार छोड़कर संसार करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें, तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम? अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल रही है। लोग एक ओर तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतना अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार करता है। कवि के इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा। हाँ माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती के तेरे श्वास हैं। इसका तो हिसाब कर अंगूठा उंगलियों पे रख, कितने खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि वर्तमान समय कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज हैं, लिखती हैं, मैं जब से ओम मंडली में जाने लगी थी तब से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतर आत्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उसमें मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीने और स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहाँ इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, बंदे देह का अभिमान तोड़, देह का अभिमान तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे, अब आयु तेरी क्षण भंगुर यहाँ, देह से नाता तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे, आयु तेरी क्षण पल घड़ियाँ, माया से नाता तोड़ बंदे, प्रभु से नाता जोड़ बंदे, न कोई तेरा संगी साथी, फिर परतन चोरी क्यों हो जाती, मिलना है तो प्रभु से मिल ले, मिलना है तो अहम से मिल ले, देही से नाता जोड़ बंदे, अहम ने निज का घर बनवाया, इसमें अपने आप बिठाया, बंदे देह का भान अब तोड़ बंदे, अहम ने अपने मम को बनाया, मम में अपने को है बिठाया, मम से विलग होकर बंदे, अहम से नाता जोड़ बंदे, प्रभु से नाता जोड़ बंदे। अतः हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपरामवृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेंगी तो न मालूम आगे चलकर क्या होगा, इसलिए इस मार्ग से इसे हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माता जी को तथा हमारे भाई बंधुओं को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी, यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो संसार में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थीं, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते तो थे और मैं मूर्ख खलकामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं ही को मूर्ख खल कामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें, जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी, पागल कहते थे। उस समय हमारे मन में यह आवाज़ उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल, अहम आत्म निश्चय मुझको माया इन्हें भरमाती है, कौड़ी बिना मैं बादशाह वे माया के पीछे मरते हैं, वे काम क्रोध को छोड़ न सकते, अब हमसे भी झगड़ते हैं। देही अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सर पर, देह अभिमानी गुलाम बने हैं माया की टोपी उनके सर पर, ज्ञान सरोवर नहाती मैं वे विषय गर्त में गिरते हैं, दैवी जन्म है मुझको हासिल वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई बुराई हो तो आप बताइए, हम घर का सारा काम काज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं हैं, आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं। वे हम में कोई बुराई तो बता ना पाते, उनके मन में तो बस यही था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं और हमें इसका विवाह, विकारी विवाह अवश्य करना है, अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी, परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ कैसे सकती थी। हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती थी, हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, मंडली की गत न्यारी, ओम मंडली जब से निकली गीता ज्ञान की सुगंधी फैली, विराट गुलशन बना है भारी री बहनों, तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर बनो ज्ञान भंडारी री बहनों, ब्रह्मा ज्ञान की शंख ध्वनि कर ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मनवश करो महतारी री बहनों। अतः हम अपने मात पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञान अमृत पिए बिन नहीं रह सकती, इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा, इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोल कर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया था इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा क्रोध था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते थे। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा ज़माना है, यह कैसा संसार है, क्या इनको ज्ञान अमृत अच्छा ही नहीं लगता, इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोहरित कर लिया है। तब हमारे मन से यह पद मुखरित हो उठे, अहो माया, पुरुषों को क्यों नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल विकारी क्यों बनाती हो, अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाया सबने है निज देश, फंसा कर मोह अपने में, दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियाँ सुनकर गोपियाँ मस्त हो जाती थीं और वे भागकर वहाँ पहुँच जाती थीं, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी, या रसीली नहीं मालूम होती थी। अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशालिनी समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञान अमृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थीं। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। एक दिन मेरी लौकिक माता जी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी, अतः मैंने उन्हें कहा, माता जी, मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है, मैं तो उसी की हो चुकी हूँ, मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी, मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूँ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे, बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूँगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरिधर गोपाल की हो चुकी हूँ, अब मैं विकारी शादी नहीं करूँगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मत वाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थीं और कहा करती थी, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना। है आज कल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न करना। खाते मांस मदिरा बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार यह निश्चय समझना। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी, अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों से बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते हवन वाले मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी, उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्र तर हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप तो कन्हैया लाल हो, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं, प्रभु मेरी लाज बचा लो, प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी तुम राखो लाज हमारी, मन की बात छिपी नहीं तुमसे गोवर्धन गिरिधारी, राखो लाज हमारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पक्षी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इनके बंधन से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, राखो लाज हमारी। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी, विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बंसरी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ, मुझे सूक्ष्म आवाज में वह कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमज़ोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, विकारी शादी करोगी ना, देखो अपना हाथ छोड़ दो, एक बार अपने मुंह से कह दो मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं, आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना, देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूँ तो मैं आत्मा को प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊँगी ही, परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से ज़रूर ले जाना। वे आश्चर्यान्वित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं, हम वही कन्याएं माताएं हैं जिनके लिए कवि ने कहा है कि हर दुख सहने वाली, मुंह से कुछ ना कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, धरती के धीरज वाली, यह भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। गंगा जैसी निर्मल है, जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सर पर ले ले दोष पराया। ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है, धरती के धीरज वाली, यह भारत की नारी है, यह भारत की नारी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहें हमारे शरीरों को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी हैं। परंतु वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे? एक ओर तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूछते थे और दूसरी ओर उन्हें पूछकर डुबो देते थे। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल देखा कि ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र जो पूछते हैं, और जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती हैं तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। तभी तो हमारा मन बोल उठा, तन मानुष का निज मंदिर, जहाँ आत्मा बिराजे अति सुंदर, अहम रथ पर हो सवार, आए हम विराट संसार। एक कौतक देखा यहाँ आकर, क्या कौतक देखा यहाँ आकर? देवी की सजाए मूर्ति, देवता की सजाए मूर्ति, तोड़ फोड़ एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ एक पत्थर, भेंट भोग सब डाल समाने, भेंट भोग सब डाल सामने, देवी को दिखला कर कहते, प्रेम भाव से पूज देवी को, प्रेम भाव से पूज देवी को, फेंकते समुद्र में और कहते, डूब जा डूब जा डूब जा। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जल निमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा, वह यह है कि ये लोग सन्यासियों के चरण छूते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? इसी कारण ही कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं। परंतु जब वही कन्या विवाह कर लेती है, तब वो जो पहले पूज्य कन्या थी, अब लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छिपाकर सबके आगे झुकती और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या में और इस माता में? यही न कि उसने कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया है। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहती हैं, कुमारी व्रत का पालन करना चाहती हैं, तो वे हमें मारते पीटते हैं। जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरों को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं, अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का स्वमान है उसे नष्ट करना चाहते हैं। तभी तो हम विकारी शादी द्वारा जीवन बर्बाद करने वाली नारियों से कहती थी, विकारी शादी की जंजीर बंधी, बर्बादी की राह गंदी है, तुम राह रूहानी भूली हो, यह विषय पान एक सूली है, जब ज्ञान हिंडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडौले झूलेंगी, जब शांति समाधि झूलेंगी तब सुध बुध सारी भूलेंगी। मेरे दिल में होता दीदार नया, स्वयंवर का श्रृंगार नया। तब पहनूंगी ताज नया, खुल जावेंगी नैना। हाँ नैना, अम्मी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना। तुम रोती रड़ती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में। हम हंसती फिरती गुरुकुल में। तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन होती हैं। परंतु कोटि कोटि मनुष्य में से कोई विरला ही इन बातों को सुनता है। जिन माताओं ने अब ज्ञान अमृत पिया था, उन्होंने तो अब पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य को पालन करने का प्रण किया, क्योंकि अब उन्होंने ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे भी अब मानव को ललकार कर कहती थीं, मत पी ओ बेहोश विकारी, मत पी ओ बेहोश विकारी। तुम ज्ञान अमृत पीते रहना, तुम विषय जहर कभी ना पीना। ज्ञान अमृत है रूहानी प्याला, पीने से है आनंद निराला। बन पड़ता है सम नंद लाला, मुकुट और कमंडल वाला। पीकर अमृत जीते रहना, मानसरोवर का झरना। हाँ मत करना संग दोष, विषय से दूर हटना 3 कोस। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता कन्या की अलग अलग कहानी है। परंतु लोगों की आंख में माया ने ऐसी धूल डाल रखी थी कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञान निष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने की बजाय वे इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे। परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं। अतः माताओं कन्याओं के मन को कोई कभी भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता ने बुद्ध अथवा गौतम को राजमहलों में बांधने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम हुआ? गौतम घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूल शंकर को घर की सीमा में रखने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद, जिन्हें ज्ञान की प्यास थी, उसे बुझाए बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वह तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में चिने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं, अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्मनिष्ठा और भी बढ़ी। इस तरह अब इन कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुआ, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्याओं माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन की तथा उनकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान लिया। पति से मिली असह्य पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि ओह, जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु मानती रहीं, उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उनके मन भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझ कर ही घर में लाया था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाएं, इनकी वासना की भूख, इनकी पशुवृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं और शराब पिएं, तो हम इनके घर पर रह सकती हैं। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञा को माने, तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें भी वह लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते हैं। हाय, हमारे मात पिता भी लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए से हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गाते न थकते थे, आज सरमायादार भाई बांधों के सामने उन पंडितों की भी तू तू नहीं बोलती, उन कथावाचकों की भी जिह्वा नहीं हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के वे भी साथी बन गए हैं। ठीक है, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच यह लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह जान सकती हैं। प्रभु, सचमुच आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। इस जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं है। हमारे प्राण भले ही जावें, परंतु प्रभु, हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तो अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं, माताओं को और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो बात न बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता कि जिस स्त्री को मैं झूठे विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता पिता देखते कि अमुक कन्या अथवा पुत्रवधु अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोक लाज और डर से वे भी अपना नाता तोड़ते तथा उन्हें घर से निकाल देने पर उतारू हो जाते। अतः कई एक को घर से निकलना ही पड़ा। आखिर परम पिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारा हैं। उसी समर्थ ने ही उनको संबल दिया, सांत्वना दी और उन बेसहारों को आश्रय तथा अभयदान दिया। कहावत भी है कि संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। अतः उस समय उन कन्याओं माताओं का मन यह गीत गा उठा था। जब पूछते हैं कहाँ चली यह घर बार छोड़, यह धन, यह मान अपना, यह प्यार छोड़कर, दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के, घर जा रहे हैं हम। इस 4 दिन की दुनिया में यह दिल लगेगा क्या? टूटी फूटी जिंदगी में आखिर मिलेगा क्या? हंस हंस के, झूम झूम के यूं गा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के, घर जा रहे हैं हम। रास्ते में जो थे कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर, अब पा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। लाखा भवन को आग। यह घटना 21 जून 1938 को हुई। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की, परंतु चूंकि यह मुखी मंगाराम का रिश्तेदार था, उसने उस रिपोर्ट पर विशेष कार्यवाही नहीं की। इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी न की। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब वह धधकती है तो अपनी ही सुख देने वाली संपत्ति को और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। जब लोगों ने देखा कि यह कन्याएं व माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती हैं, तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में जाकर ये ज्ञान अमृत पीती हैं, क्यों ना उसे ही धूली धूसरित कर दिया जाए। अतः एक दिन की बात है, जब बाबा सत्संग भवन, जो कि लखीराज भवन के नाम से भी जाना जाता था, में उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अफसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरारती लोग थे। उन्होंने उस लखीराज भवन को चारों ओर से घेर लिया और वे दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव की शक्ति सेना खड़ी हो गई और उसने किसी को भी अंदर घुसने न दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। क्रोध के वश हुए उन लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई थी कि उन्होंने यह भी न सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं, बहु बेटियां आदि अंदर हैं, और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जीते जी जल जाएंगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे न तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके, न ही इसके परिणाम को सोच सके। परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। जिसका राखा साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे सौ जग बैरी होए। लोगों ने हजार कोशिशें की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ ना सके। लखी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा लाखा भवन को आग के वृत्तांत के रूप में वर्णित है। एंटी ओम मंडली तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके कारण यह गीत उन पर ठीक घटता है। आश्चर्य कैसी मुसीबतों में देह अभिमानी पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है, यह प्रबल मोह की जंजीरों में जकड़ पड़े हैं। स्वधर्म विस्मृत उल्टी यह रीति, जन्म अमोलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक हो करके फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं। अजब तमाशा, विचित्र लीला, पुरुष को प्रकृति नचा रही है। देही अभिमान को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेन व देन के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े हैं। बाहर मुक्ता कैसी यह मूर्खता, प्रभु हमें अब समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वह कहा करते थे, हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं है। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रह कर अन्य सभी माताएं, बहनें तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए और हंगामा भी खूब किया, परंतु वे माताएं बहनें भयभीत नहीं हुईं। बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा था, वह भी टूटता गया और इस उच्च खलता को देख उन्हें यह भी हर्ष हुआ कि आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफी आगे निकल गई हैं और अब लोक लाज तथा भय के जीवन के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती। इस करुणा से पल्लवित उनका हृदय इन स्वरों में बोल उठता, सुनो सुनो भारत के प्राणी, करो अपेन ऊपर मेहरबानी, परम पिता को पहचानो, वारिस हो सत्य मानो, छोड़ो गफलत और नादानी। मनुष्य है बोलता चालता मंदिर, मुफत बनते क्यों कामी बंदर, तुम कहो करो ना अपनी हानि। आत्मघाती क्यों तुम बनते, क्यों ब्रह्मा ज्ञान न लेते, बनो योगी, जगत है फानी, देह का अभिमान न रखना, देही अभिमानी नित्य बनना, चलते फिरते बनो तुम ध्यानी। ओम निवास के बाहर पिकेटिंग। अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं, माताएं तथा भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि सभी वहीं होने लगा। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा वहीं मिलने लगी। अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि वर्तमान समय शांतिवन तेलहटी आबू रोड की इंचार्ज हैं, लिखती हैं कि एक दिन प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थीं। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़ा ही बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, लेकर पिकेटिंग कर दी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई ज्ञान अमृत पीने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि उपद्रवियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। यह पिकेटिंग 7 अगस्त 1938 को हुई। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी लौट आईं। उन्होंने अचानक ही देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञान अमृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी पंक्ति में खड़ी हो गईं। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं माताओं तथा भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे, और दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं अथवा भाई बांधव, अथवा आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ओर खड़ी थी अन्यायकारी धर्म विमुख ईश्वर विमुख कौरव सेना या आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना अथवा शिव शक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी, वे संख्या में भी बहुत थीं, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे, अथवा शक्ति दल में गिनी चुनी कन्याएं माताएं थीं। ओम निवास में अंदर बैठी हुई कन्याएं माताएं इस प्रकार के गीत गाती थीं। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना, बचपन जवानी वृद्ध आयु बाद फिर होगा कहाँ रवाना, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना, खड़े खड़े क्या सोच रहा है, तनिक सत्य नहीं जाना, हुआ कहाँ से आना बाबू, कौन देश है जाना, घमंड इतना मैं सेठ स्वामी, ओम का अर्थ नहीं पहचाना, प्रभु बिना कभी मार्ग न सूझे, समझ के पांव उठाना, जाता है समय सुहाना बाबू, कौन देश है जाना, हम सो सोहम बाजत हरदम यही अनादि गाना, समझे बिरला सयाना, शरीर छोड़ मिलाना प्रभु, धक्का जन्म मरण में खाना, वृथा जन्म गवाया, जीते जी मरजीवा बनकर छोड़ दे सब बहाना, जाना है वैकुंठ ठिकाना, कौन देश है जाना, अहम आत्मा निश्चय करके प्रभु से योग लगाना, पाना अखुट खजाना, सोचो सोचो ओ मन मूरख, छोड़ के सभी बहाना, रहा ना अब है जमाना। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थीं, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आईं। इन्हीं में से एक का नाम गोपी था। वह शहर के एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। वह चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे कि वे अपनी पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दें। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पौत्रियों को 13 तालों के भीतर ऐसा बंद कर रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। यह सेठ जी इस पिकेटिंग एवं प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहां आ पहुंची है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और संताप भी। यह सेठ एंटी ओम मंडली को बहुत धन देते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। अब इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और ले लेते। वे कई बार सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष से भी छोटी थीं, उन भिखारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया, वे हिली भी नहीं। पिकनिक करने वाले लोग उन छोटी छोटी कन्याओं को कहते कि अच्छा, आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती कि हम तब जाएंगी जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी, वरना हम भी यहीं धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। हम धरती पर चाहे पड़ जाएं, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। आखिर धरना मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और ये अपने मंतव्य में अटल हैं, तो वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम तो होती ही गई थी। आखिर वे अपने डेरे चूक कर गए, डेरे कूच कर गए। धर्म परायण पांडव दल की विजय हुई क्योंकि जिधर श्री हरि है, अर्थात पतित पावन परमात्मा है, विजय तो उस ओर निश्चित है ही। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था कि अब जो हो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। एक ओर वे सब खड़े थे और दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिव शक्ति सेना थी। परंतु उस दिन भी कुछ न हो सका। आखिर सायंकाल 7 बजे तक खड़े रहकर वह लोग वापस लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ लाए। अब सिंध की सरकार ने, कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख दिए। जिला मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु इसी सेक्शन के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उधम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने ही तोड़ा और जुलूस निकाल कर पथराव भी उन्होंने ही किया। अतः उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्याय संगत बात थी। परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया और जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही थी। अतः ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर तथा एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना और भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही थी। शांति तो भंग दूसरे लोगों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसे ही किया जाना लगे, तब तो कोई भी पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। अतः ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है, इनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जुडिशियल कमिश्नर ग्राफ डेविक तथा एक अन्य न्यायाधीश एरिक वेबस्टन ने यह निर्णय 21 नवंबर 1938 को सुनाया। ओम शांति।